अवनति काल 467 से 550 ईस्वी। स्कंद गुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हुई। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों का क्रम निर्धारित करना एक कठिन समस्या है। उसके बाद गुप्त वंश में शासन करने वाले राजाओं का क्रम हम संभावित रूप से इस प्रकार रख सकते हैं। पूर्व गुप्त 467 से 476 ईस्वी। यह कुमार गुप्त प्रथम का ही पुत्र तथा स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंद गुप्त संतानहीन मरा और उसके बाद सत्ता पूर्व गुप्त के हाथों में आई। भीतरी मुद्रा अभिलेख में उसकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी तथा पत्नी का नाम चंद्र देवी मिलता है। चूंकि वह वृद्धावस्था में राजा हुआ अतः उसका शासनकाल अल्पकालीन रहा। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। परमार्थकृत वसुबंधु जीवन वृत्त के अनुसार पूर्व गुप्त बौद्ध मतानुयायी था। कुमार गुप्त द्वितीय। पूर्व गुप्त का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ से गुप्त संवत 154 अर्थात 473 ईस्वी का उसका एक लेख मिला है जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। यह निश्चित रूप से पता नहीं कि वह स्कंद गुप्त का पुत्र था अथवा पूर्व गुप्त का। सारनाथ लेख में भूमि रक्षति कुमार गुप्ते उत्कीर्ण मिलता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुमार गुप्त को महाराज भी नहीं कहा गया है। ऐसा लगता है कि वह स्वतंत्र शासक न होकर पूर्व गुप्त का गुप्ता था जो सारनाथ में उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। बुधगुप्त। कुमार गुप्त द्वितीय के अनंतर बुधगुप्त शासक हुआ। प्रारंभ में विद्वानों का विचार था कि वह कुमार गुप्त का पुत्र था क्योंकि ह्यूएन सांग उसके पिता का नाम शक्रादित्य बताता है, किंतु नालंदा से उसकी मुहर प्राप्त हो जाने के पश्चात यह सिद्ध हो गया है कि वह पूर्व गुप्त का पुत्र था। उसकी माता का नाम चंद्रदेवी था। गुप्त संवत 157 अर्थात 477 ईस्वी का उसका सारनाथ से लेख मिला है। यह उसके शासनकाल की प्रथम ज्ञात तिथि है। इससे अनुमान किया जाता है कि उसने 477 ईस्वी में अपना शासन प्रारंभ किया। बुधगुप्त के लेख कई स्थानों से मिलते हैं। सारनाथ के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण से भी उसका स्तंभ लेख मिला है। उत्तरी बंगाल के दामोदरपुर तथा पहाड़पुर से उसके ताम्रपत्र मिलते हैं। इसमें गुप्त संवत की तिथियां दी गई है। दामोदरपुर ताम्रपत्र में उसे परम भटारक महाराजाधिराज कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसकी कुछ रजत मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर उसके शासनकाल की अंतिम तिथि गुप्त संवत 175 यानी 495 ईस्वी उत्कीर्ण मिलती है। अतः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि बुधगुप्त ने 477 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों में बुधगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था, जिसने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। स्वर्ण मुद्राओं पर उसकी उपाधि श्री विक्रम मिलती है। उसके अभिलेखों से उसके कुछ प्रांतीय पदाधिकारियों की सूचना मिलती है। एरण अभिलेख से पता चलता है कि पूर्वी मालवा में मात्र विष्णु उसका सामंत था। इसी लेख के अनुसार सुरश्मि चक्र चंद्र चतुर्वेदी गंगा यमुना दुआब का शासक था। दामोदर पुत्र ताम्रपत्र के अनुसार ब्रह्मादत्त पुंड्रवर्धन भुक्ति का शासक था। बुधगुप्त के अभिलेख तथा सिक्कों के प्रसार से यह स्पष्ट होता है कि उसने मालवा से बंगाल तक के भूभाग पर शासन किया। बल्लभी के मैत्रक नरेश भी उसकी अधीनता में शासन करते थे। मैत्रक नरेश द्रोण सिंह का 502 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें वह अपने को परम भटारक महाराजाधिराज बुधगुप्त का तत्पादुन्ध्यात बताता है। यह उल्लेख स्पष्ट रूप से उसकी सामंत स्थिति का सूचक है। खोह नामक स्थान से महाराज हस्तिन के दो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें गुप्त संवत 156 तथा 163 475 तथा 482 ईस्वी की तिथियां अंकित हैं। दूसरे लेख से पता चलता है कि वह गुप्त सम्राट की अधीनता स्वीकार करता था। उच्च कल्प वंश के महाराज जयनाथ के लेखों में 174 तथा 177 की तिथियां मिलती हैं। उच्च कल्प वंश परिव्राजकों का समीपवर्ती था जो गुप्तों के सामंत थे, अतः हम कह सकते हैं कि उक्त तिथियां गुप्त वंश की ही हैं। और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जयनाथ भी बुद्ध गुप्त का सामंत था। उसकी रजत मुद्राओं पर विजित वरी वनी रवनीपति श्री बुद्ध गुप्त दीवी जयति अर्थात राजा बुद्ध गुप्त पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग को जीतता है मुद्रा लेख उत्कीर्ण मिलता है। यही लेख कुमार गुप्त तथा स्कंद गुप्त की मुद्राओं पर भी मिलता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद बुद्ध गुप्त के समय में साम्राज्य ने अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया। बुद्ध गुप्त बौद्ध मतानुयायी था। जैसा कि चीनी यात्री ह्यूएन सांग के विवरण से पता चलता है, उसने नालंदा महाविहार को धन दान दिए थे। वह अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तथा मालवा से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। नरसिंह गुप्त बालादित्य यह बुद्ध गुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय गुप्त साम्राज्य 3 राज्यों में बट गया था। मगध वाले क्षेत्र में नरसिंह गुप्त राज्य करता था, मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त तथा बंगाल के भाग में वान्य गुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था। भीतरी मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी मिलता है। भानुगुप्त तथा वान्य गुप्त के साथ उसके संबंध के विषय में हमें पता नहीं है। नरसिंह गुप्त इन दोनों से अधिक शक्तिशाली था, अतः मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग में उसने अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। उसकी सबसे बड़ी सफलता हूणों को पराजित करना था। हूण नरेश मिहिर कुल बड़ा क्रूर एवं आततायी था। ह्यूएन सांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बालादित्य ने अपनी माता के कहने में आकर उसे मुक्त कर दिया। राजनैतिक दृष्टि से यह कार्य अत्यंत मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा। ह्यूएन सांग ने जिस बालादित्य का उल्लेख किया है उसके समीकरण के विषय मतभेद है। संभवतः वह नरसिंह गुप्त बालादित्य ही है। नरसिंह गुप्त की धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। मुद्राओं के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़े हैं और गरुड़ ध्वज की आकृति है तथा जयति नरसिंह गुप्त मुद्रा लेख उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर कमलासन पर बैठी लक्ष्मी तथा बालादित्य अंकित है। नरसिंह गुप्त बौद्ध मतानुयायी था। उसने बौद्ध विहार वसुबंधु की श्रेष्ठता ग्रहण की थी। उसने अपने राज्य को स्तूपों तथा विहारों से सुसज्जित करवाया था। ह्यूएन सांग परमार्थ तथा आर्य मंजूश्री कल्प के लेखक ने उसके बौद्ध प्रेम का उल्लेख किया है। उसी काल में वसुबंधु का निधन हुआ था। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। लगता है कि बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेने पर भी उसने अपने पूर्वजों के समान परम भागवत की उपाधि धारण की थी। भानुगुप्त का एरण से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। यह 510 ईस्वी का है। इसमें उसे संसार में सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा कहा गया है। यह लेख उसके मित्र गोपराज का भी उल्लेख करता था। यह हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर लड़ता हुआ मार डाला गया तथा उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी। यह लेख युद्ध के परिणाम का उल्लेख नहीं करता। राय चौधरी का अनुमान है कि बुद्ध गुप्त के बाद पूर्वी मालवा में जो हूण सत्ता स्थापित हुई उसी का अंत करने के लिए भानुगुप्त ने यह युद्ध किया और उसमें सफलता प्राप्त की। इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है, परंतु इस समय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा लगता है कि इसके बाद हूणों ने मालवा को जीत लिया। यह मात्र विष्णु जो बुद्धगुप्त का सामंत था का छोटा भाई धन्य विष्णु हूण नरेश तोरमाड़ की अधीनता में राज्य करता था, जिसका उल्लेख एरण की बराह प्रतिमा वाले लेख में मिलता है। भानुगुप्त के विषय में हमें अधिक ज्ञात नहीं है। सुधाकर चट्टोपाध्याय का यह विचार है कि भानुगुप्त स्वतंत्र शासक न होकर गुप्तों के अधीन कोई स्थानीय शासक था, क्योंकि उसे केवल राजा कहा गया है। संभव है उसने भी हूणों के साथ युद्ध में अपने प्राण खो दिए हों। वान्यगुप्त, इसके विषय में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत गुणेधर का ताम्रपत्र है जो गुप्त संवत 188 अर्थात 507 ईस्वी का है। नालंदा से उसकी एक मुहर मिली है जिस पर महाराजा धीराज का विरुद्ध अंकित है। गुणधर ताम्रपत्र में उसके दो प्रांतीय शासकों विजयसेन एवं रुद्रदत्त के नाम मिलते हैं तथा बौद्ध विहार के लिए कुछ भूमि दान दिए जाने का वर्णन है। उसके कुछ सिक्के भी मिलते हैं। कुमारगुप्त तृतीय। नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध का राजा बना। भीतरी तथा नालंदा मुद्रा लेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है। दामोदरपुर के पांचवें ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है जिसकी उपाधियां परम दैव परम भटारक महाराजा धीराज मिलती है। उसके नाम का केवल प्रथमा अक्षर कु प्राप्त है, अतः इस शासक को हमें कुमारगुप्त तृतीय ही मानना चाहिए। इस लेख की तिथि गुप्त संवत 224 अर्थात 543 ईस्वी है। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है जो संभवतः उसका पुत्र था और 550 ईस्वी तक राज्य करता था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन। दो शताब्दियों के निरंतर उत्थान के पश्चात शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य इस वंश के अंतिम महान शासक स्कंद गुप्त की 467 ईस्वी मृत्यु के पश्चात पतन की दिशा में तेजी से उन्मुक्त हुआ। यद्यपि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किसी न किसी रूप में 550 ईस्वी तक मगध पर अधिकार रख सकने में सफलता प्राप्त की, परंतु इसके पश्चात भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण युग का दावेदार गुप्त साम्राज्य सदा के लिए तिरोहित हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों ने इस दिशा में योगदान दिया। सामान्य तौर से हम इस साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी मान सकते हैं। पहला, अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। दूसरा, शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप। तीसरा, उच्च पदों का अनुवंशिक होना। चौथा, प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार। पांचवा, बाहा आक्रमण। छठवा, बौद्ध धर्म का प्रभाव। अब हम इसके विस्तार से व्याख्या करेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण यह था कि स्कंद के बाद शासन करने वाले राजाओं में योग्यता एवं कुशलता का अभाव था। गुप्त वंश के प्रारंभिक नरेश अत्यंत योग्य एवं शक्तिशाली थे। समुद्रगुप्त एवं उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की आकांक्षा रखते थे। कुमारगुप्त प्रथम इतना योग्य था कि उसने विशाल साम्राज्य को अक्षुण्य बनाए रखा। स्कंदगुप्त एक वीर एवं पराक्रमी योद्धा था जिसने पुष्यमित्र एवं हूण जैसे भयानक शत्रुओं को परास्त किया, परंतु उसके बाद के गुप्त राजाओं में वीरता एवं कार्यकुशलता नहीं थी। गुप्त राजकुमारों में आपसी वैमनस्य एवं विद्वेष भाव था। कुछ राजकुमारों ने विभिन्न भागों में अपनी स्वतंत्र सत्ता भी कायम कर ली थी। तात्कालिक विक्षुब्ध राजनीतिक वातावरण सम्राट की वीरता पराक्रम एवं कार्य कुशलता की अपेक्षा करता था, परंतु गुप्त सम्राटों में इन गुणों का अभाव था अतः साम्राज्य का विघटन अवश्यंभावी था। गुप्त प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था। साम्राज्य में अनेक सामंती इकाइयां थी। गुप्त काल के सामंतों में मौखरी, उत्तरगुप्त, परिव्राजक, सनकानिज, वर्मन, मैत्रक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन वंशों के शासक महाराज की उपाधि ग्रहण करते थे। स्थानीय राजाओं तथा गणराज्यों को स्वतंत्रता दे दी गई थी। गुप्त शासक अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत एवं प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। प्रशासन की यह सामंती व्यवस्था कालांतर में साम्राज्य की स्थिरता के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। जब तक केंद्रीय शासक शक्तिशाली रहे तब तक तो वे दबे रहे, परंतु केंद्रीय शक्ति के निर्बल होने पर अधीन राजाओं ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त प्रशासन में सभी ऊंचे पद वंशानुगत होते थे। हरिसेन जो कि एक महादंड नायक था का पिता ध्रुवभूति भी इस पद पर कार्य कर चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन के उदयगिरी उल्लेख से यह पता चलता है कि वह अनुवंशिक रूप से अपने पद का उपभोग कर रहा था। करमदंडा लेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त का एक मंत्री पृथ्वीसेन भी अपने पिता के बाद इस पद पर नियुक्त हुआ था। पुनर्वर्धन भुक्ति में दत्त परिवार अनुवंशिक रूप में शासन कर रहा था। इसी व्यवस्था के फलस्वरूप कभी कभी अयोग्य व्यक्ति भी इन पदों पर नियुक्त हो जाते थे, जिससे शासन तंत्र में शिथिलता आ जाती थी। इससे पदाधिकारियों की सफलता पूर्ण रूप से सम्राट पर निर्भर करती थी। इस समय में जब गुप्त साम्राज्य निर्बल व्यक्तियों के हाथ में था तब ये पदाधिकारी अवश्य ही राज्य की एकता और स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुए होंगे। गुप्त साम्राज्य गुप्त युग में प्रांतीय शासकों एवं सामंतों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। अपने अपने प्रदेशों में वे सम्राट के समान ही सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे। वे महाराज की उपाधि धारण करते थे। सामंतों को सेना रखने का अधिकार था। वे अपने अधिकार क्षेत्र की जनता से वसूल कर सकते थे, जनता से कर वसूल कर सकते थे। अग्रहार दान की प्रथा भी प्रचलित थी। इसके अनुसार सम्राट ब्राह्मणों को भूमि दान में देता था। इस प्रकार की भूमि से संबंधित समस्त अधिकार भी दानग्राही व्यक्ति को मिल जाते थे। इसी भूमि में स्थित समस्त चारागाहों, खानों, निधियों, वेष्टि आदि के ऊपर भी उनका अधिकार हो जाता था। आर्थिक तथा राजनैतिक दोनों ही दृष्टि से यह व्यवस्था साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इससे एक ओर जहां राज्य की आय कम हुई, वहीं दूसरी ओर दानग्राही व्यक्ति छोटे छोटे राजा बन बैठे। प्रांतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल ही किया करता था तथा इस विषय में वह सम्राट से परामर्श भी नहीं करता था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उस प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का नगरपाल नियुक्त किया था। इस व्यवस्था में कर्मचारियों की राजभक्ति प्रांत के राज्यपाल के प्रति होती थी, न कि सम्राट के प्रति। प्रांतों में जूनागढ़ को विशेष स्थान प्राप्त था। वहां के राज्यपाल न तो अपने अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग करते थे और न ही नियमित रूप से सम्राट का उल्लेख करते थे। वहां विद्रोह की आशंका सदैव बनी रहती थी। यही कारण था कि प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ ही स्वतंत्र हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि गुप्त राज्यपालों ने प्रांतों में अपना प्रभाव बढ़ाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा की हो। गुप्त साम्राज्य के पतन में वहां आक्रमणों का विशेष हाथ रहा है। इससे आक्रमणों में हूणों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त शासकों का हूण संकट की ओर दृष्टिकोण बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं रहा। स्कंदगुप्त ने यद्यपि हूणों को परास्त किया था, तथापि हिंदू सिंधु घाटी को जीतकर उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। उसने केवल हूण संकट को कुछ समय के लिए टाल दिया। बार बार हूणों का आक्रमण होने के बावजूद भी गुप्त शासकों ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। अतः गुप्त साम्राज्य में हूणों की घुसपैठ शुरू हो गई। एरण अभिलेख से पता चलता है कि हूण नरेश तोरमाड़ ने 500 ईस्वी के बाद इस प्रदेश को जीतकर अधिकार में कर लिया था और वहां धन्य विष्णु, जो गुप्तों के एरण के राज्यपाल मात्र विष्णु का भाई था, ने तोरमाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तोरमाड़ के पुत्र मिहिर कुल के काल में हूणों की शक्ति और अधिक बढ़ी। उसने नरसिंह गुप्त बालादित्य पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। नरसिंह गुप्त ने घोर अदूरदर्शिता का परिचय दिया और अपनी माता के कहने में आकर इसे भयंकर शत्रु को मुक्त कर दिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा। प्रारंभिक गुप्त नरेश वैष्णव धर्मानुयायी थे। वे चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा रखते थे। समुद्रगुप्त का आदर्श धरणी बंध तथा उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श कृत्सन पृथ्वी जय था, परंतु कुमारगुप्त प्रथम के समय से गुप्त परिवार पर बौद्ध धर्म की छाप पड़ने लगी। इस धर्म का एक परिणाम यह निकला कि अब गुप्त शासक पृथ्वी विजय के स्थान पर पुण्यार्जन की चिंता में लग गए। उन्होंने अपने राज्य को चैत्यों और बिहारों के सजाने में ही अपना गौरव माना। उससे उनकी युद्ध प्रियता जाती रही। छठी शताब्दी में हूण आक्रमण तथा आंतरिक कलह ने गुप्त साम्राज्य की स्थिति को अत्यंत डवाडोल बना दिया था। इस समय में शक्तिशाली सेना एवं सुदृढ़ शासन की महती आवश्यकता थी, परंतु बुद्धगुप्त और नरसिंह गुप्त जैसे राजा बौद्ध धर्म के प्रभाव में डूबे रहे। हुएन सांग हमें बताता है कि जिस समय हूण नरेश बुद्धगुप्त और नरसिंह गुप्त जैसे राजा बौद्ध धर्म के प्रभाव में डूबे रहे हुएन सांग हमें बताता है कि जिस समय हूण नरेश मेहरकुल ने बालादित्य के ऊपर आक्रमण किया, उसने बिना युद्ध किए ही अपना राज्य छोड़ दिया। किंतु फिर भी जब उसके सैनिकों ने हूण नरेश को पराजित कर बंदी बना लिया, तब भी नरसिंह गुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर मिहिर कुल को छोड़ दिया था। इस प्रकार बौद्धों की अहिंसा नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया, जिसका विनाशकारी परिणाम साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से बौद्ध संस्थाओं एवं बिहारों को अत्यधिक दान दिए जाने लगा, फलस्वरूप राजकोष रिक्त हुआ। इस समय भारतवर्ष में अनेक नई नई शक्तियों का उदय हो रहा था। थानेश्वर में वर्धन, कनौज में मखौरी कामरूप में वर्धमान तथा मालवा में औलिकर वंशी यशो वर्मन का उदय हुआ। इनमें यशो धर्मन गुप्त साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। उसने गुप्त साम्राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी यशो धर्मन के पूर्वी भारत के अभियान को गुप्त साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण मानते हैं। इस प्रकार इन सभी कारणों से ने मिलकर गुप्त साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था तथा अंततोगत्वा उसका पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करते हुए रमेश चंद्र मजुमदार ने लिखा है, गुप्त साम्राज्य के पतन में उन्हीं परिस्थितियों का योगदान रहा जो उसके पहले मौर्य साम्राज्य तथा उसके बाद मुगल साम्राज्य को धराशायी करने में सहायक रही। गुप्त साम्राज्य का पतन प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। इसके साथ ही भारतीय इतिहास विभाजन एवं विकेंद्रीकरण की दिशा में उन्मुक्त हुआ। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है।